डैडी, अंशु की आवाज़ सुनकर शान के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए, साथ ही कुछ परेशान भी हो गया। उसने तुरंत ही चिंता भरे स्वर में कहा, हाँ बेटा, डैडी बोल रहे हैं। क्या हुआ बेटा, आप रो रही हैं?
डैडी, बेबी को फीवर हो गया है, बेबी को आपके पास आना है, बेबी को आपकी बहुत याद आ रही है।
अंशु ने लगभग रोते हुए ये बातें कहीं और इतना काफ़ी था शान को विचलित करने के लिए। दूसरी तरफ से अंशु के रोने की आवाज़ें आ रही थीं, जिससे शान और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने खुद को शांत करते हुए बड़े ही प्यार से कहा, अंशु बेटा, आप चुप हो जाइए, डैडी आ रहे हैं। कल तक डैडी आपके पास पहुंच जाएंगे, पर उसके लिए आपको चुप होना होगा। आप तो डैडी की ब्रेव बेटा है ना, चुप हो जाइए बेटा। डैडी अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कल आपके पास पहुंच जाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और रोना बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ फ़ोन स्पीकर पर था। आरवी ने जैसे ही शान की बात सुनी, उसके लबों पर एविल मुस्कान फैल गई, आंखों में चमक आ गई। अंशु ने भी लबों पर मोहिनी मुस्कान सजाकर उसको देखा, तो आरवी ने आंखों से आगे बात करने को कहा। अंशु ने सुबकते हुए शान से कहा,
ओके डैडी, अब बेबी नहीं रोएगी, आप जल्दी आ जाइए।
हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आपकी मम्मा कहाँ हैं? इतनी रात को आपने फ़ोन कैसे किया? ये सवाल सुनकर अंशु ने बगल में बैठी आरवी को देखते हुए कहा,
डैडी, मम्मा बेबी के पास है, बेबी को आपसे बात करनी थी, पर आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मम्मा ने कार्तिक अंकल से आपका नंबर लेकर आपको फ़ोन किया।
अच्छा बेटा, आप रोना नहीं, डैडी जल्दी आएंगे। आप फ़ोन मम्मा को दीजिए, डैडी को उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
ओके डैडी, लव यू डैडी, आई मिस्ड यू,
लव यू टू बच्चे। अंशु अब मुस्कुरा उठी। उसने फ़ोन आरवी की तरफ बढ़ा दिया, जिससे पहले तो वो चौंक गई, फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और फ़ोन लेकर कान पर लगा दिया। कुछ पल दोनों तरफ अजीब सी खामोशी फैली रही, फिर शान के कुछ ना कहने पर आरवी ने ही खामोशी तोड़ते हुए कहा, हेलो। शान शायद समझ नहीं रहा था कि बात कैसे शुरू करे, पर आरवी के पहल करने पर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अंशु को कब से बुखार है? शान ने सीधे काम की बात शुरू की, तो आरवी ने भी सीधे से जवाब दिया, सुबह से है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दवाई दी है, अभी आराम है बुखार पर, जिद कर रही थी आपसे बात करने की। आपका फ़ोन नहीं लग रहा था तो कार्तिक जी से आपका ये नंबर लिया और इस वक्त आपको फ़ोन करना पड़े। आरवी ने भी वही झूठी कहानी सुनाई, जिससे शान को उसकी बात पर भरोसा हो गया। उसने आरवी की पूरी बात सुनने के बाद कहा, अंशु का ध्यान रखना, अगर बुखार हो तो डॉक्टर को दोबारा बुला लेना। अगर अंशु मुझसे बात करने की जिद करे तो इसी नंबर पर फ़ोन करना। मैं पहली फ्लाइट लेकर निकल रहा हूँ, फिर भी कल शाम तक ही पहुंच सकूंगा, तो ध्यान रखना अंशु का। इसके बाद एक बार फिर दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। फिर शान ने ही आगे कहा, रखता हूँ फोन। जी बाय, अपना ध्यान रखिएगा। शान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कॉल कट कर दिया। आरवी कुछ निराश जरूर हुई, पर फिर उसके आने की बात याद करके मुस्कुरा उठी। उसने फ़ोन रखा और दोनों माँ बेटी खुशी से चीखते हुए एक दूसरे के गले से लग गए। दोनों ही उसके आने की खबर सुनकर बहुत खुश थे। आरवी अंशु को सीने से लगाए ही लेट गई और जल्दी ही दोनों नींद के आगोश में चले गए। दूसरी तरफ शान ने कार्तिक को एक मैसेज किया, फिर फ़ोन में आरवी और अंशु की साथ वाली फ़ोटो निकालकर देखने लगा। इन्हीं तस्वीरों के सहारे उसने उनके बिना इतने दिन बिताए थे। आरवी और अंशु दोनों में उसकी जान बसती थी और उस रात की गलती की वजह से वो दोनों से दूर हो गया था, पर अब वापस जाना था और सामना करना था उसका। कुछ देर वो दोनों की फ़ोटो देखता रहा, उसके बाद उसने अपना बैग पैक किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह से अंशु और आरवी बड़ी ही बेसब्री से शान के आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही काफ़ी खुश थे और उनको खुश देखकर बाकी सब भी खुश थे। अंशु सबको बता चुकी थी कि आज उसके डैडी आने वाले हैं। उसकी एक्साइटमेंट और मासूमियत देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा था। आज संडे था तो सभी घर पर ही थे। सारा दिन किसी तरह बीता और शाम के 5 बज गए। अब किसी भी वक्त शान आने वाला था। उसके आने की खुशी में आरवी उसके पसंद का खाना बनाने के लिए किचन में लगी हुई थी, जहां सौरभ उसकी मदद कर रहा था। छाया अंशु और बाकी सबके साथ हॉल में थी और अंशु के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद एक कार घर के बाहर रुकी, सबका ध्यान उस तरफ चला गया। कुछ ही मिनट बाद लंबे लंबे डग भरते हुए शान ने मेंशन के अंदर कदम रखा, साथ ही लगेज भी घसीट कर ला रहा था। अंशु की नज़र जैसे ही शान पर पड़ी, वो डैडी डैडी कहते हुए नन्हे नन्हे कदमों से गेट के तरफ दौड़ गई। अंदर किचन में सब्जी काटती आरवी के कानों में जैसे ही अंशु की आवाज़ पड़ी, उसको पता चल गया कि शान आ गया है और इसके साथ ही उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने सब काम छोड़ा और शान को देखने के लिए दौड़ते हुए किचन से बाहर चली गई। सौरभ उसकी व्याकुलता देखकर मुस्कुरा उठा। आरवी किचन के एंट्रेंस से कुछ आगे बढ़ी, तभी उसको गेट पर खड़ा शान दिखा और इसके ही उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। महीने भर बाद वो शान को देख रही थी। व्याकुल निगाहों ने उस पर से हटने से इनकार कर दिया और सांसें थम थम कर चलने लगी। वो एकटक शान को देखने लगी। वहीं शान ने अपनी प्रिंसेस को देखा तो सख्त चेहरा एकदम से कोमल हो गया। तनाव की जगह चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए, लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने बैग छोड़ा और घुटने जमीन पर टिकाकर बैठते हुए अपनी बाहों को फैला दिया। अंशु दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और अपनी नन्ही नन्ही बाजुओं को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटते हुए उसके ऊपर लटक गई। शान ने भी उसकी अपनी बाहों में भरते हुए सीने से लगा लिया। लगभग महीने भर बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। अब जो उनके चेहरे पर खुशी थी वो देखते ही बनती थी। सब बाप बेटी का मिलन और उनका प्यार देख रहे थे। आरवी भी उन दोनों को एक टक देखने लगी। लबों पर जहां मुस्कान थी वहां आंखों में नमी तैर गई। भावुक हो गई थी वो इतने वक्त बाद शान को देखकर और अंशु और शान के प्यार को देखकर। कहीं ना कहीं दोनों के बीच आई दूरियों की वजह वो थी, ये सोचकर आरवी कुछ उदास भी हो गई। फिर उसने मन ही मन वादा किया कि अब जल्दी ही सब ठीक कर देगी और अपने आंसुओं को साफ करने के बाद लबों पर मुस्कान सजाए उन दोनों को देखने लगी। दोनों बाप बेटे कुछ देर यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर शान ने उसको खुद से दूर किया और प्यार से उसके माथे को चूमने के बाद बोला, कैसा है मेरा बच्चा? बच्चा तो डैडी के आने की न्यूज़ सुनकर ही ठीक हो गया। उसकी बात सुनकर शान हंस पड़ा और फिर मुस्कुराकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए फिर अब डैडी को लव कीजिए। अंशु ने झट से उसके गाल पर किस कर दिया और अपनी गाल को उसकी तरफ बढ़ाया तो शान ने भी उसके गाल पर किस कर दिया। अंशु ने उसको देखा और नाराजगी से मुंह फुलाते हुए बोली, डैडी अंशु ने आपको बहुत सारा मिस किया, अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी और अगर आप दोबारा बेबी को अलोन छोड़कर गए तो बेबी आपसे कट्टी हो जाएगी। शान ने उसके टमाटर जैसे गोल मटोल गालों को खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, अब डैडी कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी तो आपको डैडी से कट्टी होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पक्का प्रॉमिस? अंशु ने अपनी नन्ही सी हथेली उसकी तरफ बढ़ा दी जिसे थामते हुए शान एक बार फिर मुस्कुराया, पक्का प्रॉमिस, और अपनी प्रिंसेस से किया वादा डैड कभी नहीं तोड़ते। डैडी आप अब बेबी से साथ प्ले करेंगे? बिल्कुल, पर उससे पहले डैडी को फ्रेश होना है। आपको पता है डैडी कितनी दूर से आए हैं और थोड़े थक भी गए हैं, पहले फ्रेश होकर आ जाएं, फिर आपके साथ जी भरकर खेलेंगे।
शान की बात अंशु झट से समझ गई और मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। शान ने एक बार फिर उसके माथे को चूमा और फिर उठकर खड़ा हो गया। एक हाथ से अपने ट्रॉली बैग के हैंडल को थामा तो दूसरे से अंशु की हथेली थामकर बाकी सबकी तरफ बढ़ गया। छाया ने उसको विश किया, शान ने भी अर्पिता जी, सुभाष जी और सुयश जी के पैर छुए। उसको वापस देखकर खुश तो सभी थे पर अपनी नाराजगी कायम रखते हुए बस बेमन से सर पर हाथ रख दिया पर बोले कुछ नहीं। फिर भी शान ने बुरा नहीं माना। सबने पैर छूने के बाद वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए मुड़ा उसके कानों में आरवी की बेचैनी भरी आवाज पड़ी, मिस्टर मल्होत्रा। शान के आगे बढ़ते कदम एक पल को ठिठके पर फिर उसने अपना दल मजबूत किया और इस करुण पुकार को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। आरवी का चेहरा एकदम से मुरझा गया पर फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुरा दी और झट से किचन में भाग गई। बाकी सब जो उन दोनों को देख रहे थे वो सभी परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल बाद आरवी हाथ में ट्रे लिए बाहर आई और मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंची और निगाहें घुमाई तो शान सोफे से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा नजर आया। नीचे जिस चेहरे पर सौम्य सी मुस्कान थी अब वो एकदम सख्त हो चुका था। शान के आने का पता शान को भी चल गया पर उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और ना ही अपनी आंखें ही खोली, जबकि खुद भी बेकरार था उसको देखने को। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर भी था कि कहीं उसके कमजोर ना पड़ जाएं और अपनी फीलिंग्स ना जाहिर करते। फिर महीने भर पहले उनके बीच जो हुआ वो भूला नहीं था वो, इसीलिए भी आरवी का सामना नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अगर उसने कुछ सवाल किया तो उसका जवाब नहीं दे सकेगा वो। आरवी ने शान के सख्त चेहरे को देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोली, सख्त जान हैं आप और उतने ही ज्यादा अकड़ू भी हैं। कोल्ड हार्टेड मैन बनते हैं ना कि मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। अब आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे इस पत्थर दिल आदमी को पिघलने पर मजबूर करती हूँ। आरवी के लबों पर शातिर मुस्कान फैल गई। उसने ट्रे को सोफे के सामने वाले टेबल पर रखा और फिर शान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। शान के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। कुछ सेकेंड तक रूम में गहरा सन्नाटा पसरा रहा, फिर अचानक ही उसको अपने बालों में आरवी की नर्म उंगलियों का घूमने का एहसास हुआ और उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दीं। सीधा होने लगा पर उससे पहले ही आरवी ने उसके कंधों को थामकर उसको वापस सोफे से टिकाते हुए कहा, कुछ देर ऐसे ही बैठे रहिए, बेटर फील करेंगे। वैसे भी वहां कोई था नहीं कुछ कहने को, तो अपना ध्यान तो रखा नहीं होगा, पर अब आप अपने घर में हैं और यहां मैं हूं आपका ध्यान रखने के लिए।